الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة الحجرات کی تفسیر ہماری اس کلاس میں چل رہی ہے. سورة الحجرات کا ایک خاکہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کلاس کو شروع ہونے سے پہلے. وہ اس طرح سے ہے کہ اس کی جو شروع کی پانچ آیات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھلایا گیا ہے، اور اس کے بعد کی جو چار آیات ہیں تو ان کے اندر صحابہ کرام کا ادب سکھلایا گیا ہے، جس میں صحابہ کرام کا مقام ہم نے ڈسکس کیا، حتیٰ کہ اس کے اندر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ مشاجرات صحابہ کو بھی ڈسکس کیا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئی تھیں تو ان جنگوں کی کیا وجوہات بنی تھیں، اور علماء اہل سنہ والجماعت کا صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں تھیں تو ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیسے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ سب تفصیل کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک میں ہی پڑھ لیا تھا. اس میں صحابہ کرام کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا کے رکھ دیا تھا، جس کی گارنٹی اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن مجید کے اندر دے دی، تو اس کا بھی یعنی یہ آیت بھی بہت زیادہ اہم ہے. کیونکہ کوئی صحابہ کے اوپر اگر اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ نے یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے تھے، یا انہوں نے پھر دنیا کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے قرآن کی آیات کافی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے تاریخ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ سچی نقل کی گئی کہ نہیں نقل کی گئی. تاریخ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن قرآن اور حدیث کے بارے میں یہ بات کنفرم کہی جا سکتی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سچ ہے. تو قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے قلوب کے اندر اس کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو اور فسق کو اور گناہ کو مکروہ بنا دیا. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ جو آیات ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں نا اس کا مخاطب صحابہ کرام کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ تو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے مخاطب ہے یہ آیات. تو ان میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کنفرم کر دیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کس چیز کو محبوب بنا دیا، ایمان کو، اور کس چیز کو مکروہ بنا دیا، کفر کو اور گناہ کو، تو اب صحابہ کے اوپر الزام لگانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. تو اس سے جو ہے وہ مقام صحابہ ان آیات میں ہمیں پتہ لگتا ہے. اور اس کے بعد جو آیت نمبر 9 ہوتی ہے، کیونکہ 5 نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کا ادب ہو گیا، پھر اس کے بعد 4 آیات جو ہیں وہ صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں ہو گئیں، پھر ایک آیت آیت نمبر 9 اس کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا کہ سب بھائی بھائی ہیں، تو اگر ان کے درمیان کچھ معاملہ ہو جائے تم ان میں ملاپ کرا دیا کرو، سلو کرا دیا کرو. تو یہ آیت نمبر 10 ہو گئی. اور اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کو ایمان والوں کے اوپر حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے، یہ 6 باتیں کیا تھیں اگر آپ لوگ ایک ایک کر کے گنوائیں تاکہ آپ کے بھی تھوڑا ریویژن ہو جائے اور کچھ کلاس پارٹیسپیشن بھی ہو جائے، کہ کن 6 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا آیت نمبر 11 اور 12 میں.
وہ
एक ही करके अगर आप लोग बताएं। इस क्लास की तरतीब ऐसे ये है कि चैट विंडो के ऊपर लिख करके जवाब दिया जाए, तो इसमें वैसे तो एनकरेज नहीं करते क्योंकि ऐसे कई बात है, यानी एक बेहतर भी फैल सकती है क्लास में, तो जो अनम्यूट नहीं है तो वो अपने आप को म्यूट करें और शोर ना होने दें, ईमान मजाक ना होना है। हाँ ठीक है, ये पहली चीज है। बसर कौम मिन कौमिन, ठीक है। दूसरी चीज जिसने जिसने मना किया, वला तलमिजू अनफुसकुम, ऐब ना लगाए, एक दूसरे को इल्जाम ना दें, इल्जाम तराशी करना इससे मना कर दिया, ठीक है माशाल्लाह। तीसरी चीज हराम करार दिया अल्लाह ताला ने, उनको अगर आप फोन करके बता दें तो माइक को, अलकाब। अच्छा ये तीसरी चीज तो नहीं थी गीबत, लेकिन हाँ गीबत भी उन छह चीजों में से एक है, तो तीसरी चीज थी। बाकी लोग नहीं देख रहे, किताब अगर सामने हो तो आप किताब से देख करके जवाब दे सकते हैं, या कुरान की आयत सामने रखते हैं तो उससे भी अच्छा खासा समझ में आ जाता है जिनको उर्दू बोलना आती है। तो उर्दू के अल्फाज यानी कि बहुत सारे अल्फाज उर्दू जबान में, या आप भी इनकी तरह करेंगे। तीसरी चीज थी वला तनाबतु बिल अलकाब, कि एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो, ठीक है। अलकाब का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये तीन चीजें थी आयत नंबर 11 में, और आयत नंबर 12 के अंदर इज्तनिबू कसीरम मिन अज़्ज़न, एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारियो, तो जैसी में ना। तो जो चौथी चीज है वो है कि दूर रहो, इज्तनाब करो ज़न से, ठीक है, यानी बदगुमानी से, ठीक है। और इज्तनेबू का मतलब क्या होता है कि यानी इज्तनाब करने का मतलब होता है कि बहुत दूर रहो, उसके करीब भी ना जाओ, करीब भी ना फटको, ठीक है। एक तो ये चीज होती है ना कि आप कोई काम ना करें, ठीक है, ये यानी कोई काम है और बस इसको इससे इसे मना कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि पिछली आयत के अंदर है कि मजाक ना उड़ाओ, वहां पर इज्तनिबू का जिक्र नहीं है कि मजाक उड़ाने से इज्तनाब करो, ठीक है, वहां पर है कि जी मजाक ना उड़ाओ, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं मना करने के, एक तरीका होता है कि बस उस चीज का नाम लेकर के आपको मना कर दिया, ये काम ना करो, और दूसरा तरीका होता है कि दूर रहो, इज्तनाब करो। तो ये जो है ना वो मना करने की एक और ज्यादा तीन तरीका है मना करने का, कि दूर रहने का कहा गया है, करीब भी ना फटको उसके, बहुत मानी करने का, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज की वाला तजस्सुसु, और तजस्सुस ना करो, एक दूसरे के भेदों के बारे में टटोलो नहीं। और छठी चीज थी वाला यक्तु बाज़ुकुम बाज़ा, यानी गीबत ना करो, ठीक है। ये छह चीजें जो है अल्लाह ताला ने हराम कर दी थी इन दो आयात के अंदर। फिर उसके बाद जो आयत नंबर 13 है वो हमने पिछली क्लास में कंटिन्यू करी, जो आज भी तिलावत की गई कि तमाम इंसानों को अब अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहे हैं, ठीक है। पिछली आयतों के अंदर या अय्युह लज़ीना आमनू से खिताब किया था, अब या अय्युह नास से, यानी तमाम इंसान, कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से बनाया, और फिर हमने तुम्हें बना दिया शुऊबा व कबाइला, खानदानों में और कबीलों में, लितआरफू, ताकि तुम आपस में उनको पहचान सको, इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हें ज्यादा तकवा वाला है, इंदल्लाह खबीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला और खबर रखने वाला है। पिछली क्लास के अंदर हमने तफसील के साथ एक टॉपिक पे बात करी थी कि ये जो इंसानों के दरमियान अल्लाह ताला ना कबीले बनाए और खानदान बनाए, ठीक है, तो ये तो यानी पहचान के लिए अल्लाह ने बनाया और इस बात को हम आसानी से समझ भी लेते हैं, ठीक है, कि हर फैमिली का बंदा जो होता है तो वो अपनी फैमिली के निस्बत से पहचाना जाता है, ताल्लुक से पहचाना जाता है, ठीक है। लेकिन एक और बात क्या थी कि इवन जो माल और दौलत के एतबार से तफरीक है ना, तो ये तफरीक भी अल्लाह ताला ही की तरफ से बनाई हुई है, ठीक है। तो इसके तहत हमने क्या बात करी थी कि ये जो रिस्क है, ठीक है, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, ये तफरीक अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। तो रिस्क का ताल्लुक जो है वो अल्लाह की इस यानी इस तकसीम से है, फिर किस चीज से नहीं है रिस्क का ताल्लुक, ये हमने पिछली क्लास में तफसील से बात करी थी, किसी को याद है कि रिस्क का ताल्लुक किस चीज से नहीं है, प्रोविजन की खातिर। आप इनको फोन कर सकती हैं प्लीज, रानी साहब, ये म्यूट कर लें प्लीज, मैं खुद भी इनको म्यूट कर सकता हूँ लेकिन फिर ये अनम्यूट हो जाएंगे थोड़ी देर में। चलो मैंने कर तो दिया फिलहाल। अच्छा, तो ये याद है किसी को कि रिस्क का ताल्लुक अल्लाह ताला की तकसीम से है, तो फिर किस चीज से नहीं है, ये बात समझाई थी। एनीवन रिमेम्बर्स किस चीज से नहीं है रिस्क का ताल्लुक? ये तो बड़ी मायूस कन सूरत हाल है, किसी को याद कुछ नहीं है। लिख लिया करें किताब के ऊपर जो इल्म से मुताल्लिक बातें हैं, उनको लिखना बुरी बात नहीं है। अगर आपने लिख लिया होता एक लफ्ज तो अभी आप देख के बता देती, लेकिन किताब पे लिख लेना, फिर किताब का होना भी उसके लिए जरूरी होगा, तो किताब का कुछ इंतजाम भी करके बैठे रहें तो ज्यादा फायदा होगा। जी, किसी को याद नहीं है रिस्क का ताल्लुक अल्लाह की तकसीम से है, तो फिर किस चीज़ के साथ नहीं है? जो हम उमूमी तौर पर हम क्या समझते हैं कि इस शख्स के पास बहुत रिस्क है, तो क्यों है इसके पास ज़्यादा रिस्क, क्यों है इसके पास ज़्यादा माल और दौलत, और किसी के पास नहीं होती है तो हम उसको किस चीज़ का इल्ज़ाम देते हैं कि भाई इसके पास इतना कम पैसा है तो क्यों है इतना कम पैसा इसके पास? हम कहते हैं ना कुछ माशरे के अंदर हमारे यहाँ बहुत चीज़ें राइज हैं। जी, मेहनत से, ठीक है, हमारे जहन में यह है कि रिस्क का ताल्लुक जो है वो मेहनत से है, कि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा रुपए पैसे मिलेंगे, माल दौलत मिलेगी, ठीक है, और जो कम मेहनत करता है तो उसको कम रुपए पैसे मिलते हैं। इसका ताल्लुक इससे नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो अल्लाह की तकसीम से है, तो इसकी साफ और वाजह दलील यह है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला भी कभी बहुत कम माल दौलत वाला होता है, और बहुत कम मेहनत करने वाला कभी बहुत ज्यादा माल दौलत वाला होता है, ठीक है। तो अगर यही चीज रिस्क के लिए जरूरी होती तो फिर मेहनत के बदले में उसको जरूर ज्यादा माल मिलता, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तकसीम होती है। और दूसरी बात ये भी करी थी कि अगर मेहनत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर हम मेहनत करते क्यों हैं, और अपनी औलादों को मेहनत करना सिखाते क्यों हैं, उसकी क्या वजह थी, ये भी याद रहना जरूरी है। मेहनत करना सुन्नत है, ठीक है, जाहिर है जो सुन्नत है वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से सुन्नत है। आप जो कुछ भी किया करते थे वो अल्लाह के हुक्म ही की वजह से किया करते थे, तो इस वजह से ये कहा जाएगा कि मेहनत करना सुन्नत है, ठीक है। तो आपको एक हदीस भी सुनाई थी कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि अपने हाथ से कमाने वाला अल्लाह ताला का महबूब होता है, ठीक है, और दूसरे अंदाज में इस बात को कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला को हर सुन्नत से मोहब्बत है, ठीक है। तो अगर मेहनत करना सुन्नत है, जाहिर है, तो सुन्नत से मोहब्बत है, तो इस वजह से मेहनत करने से मोहब्बत है। और दूसरी तरफ नबी रसूलुल्लाह ने फरमा भी दिया कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का महबूब होता है, तो इस वजह से हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट समझाया था मिसालें दे दे करके, कि हमें अपने औलादों के अंदर
जो मेहनत करने का जज्बा पैदा करते हैं ना, तो उसकी वजह भी साथ साथ उनको बतानी चाहिए कि ये सुन्नत है, इस वजह से तुम मेहनत करो, और ये अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने पाने का तरीका है, इस वजह से मेहनत करो। इस वजह से नहीं कि मेहनत करोगे तो ज्यादा कमाओगे और ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सको, जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजार सकोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों की जहन साजी करनी चाहिए, तभी फिर बच्चे जो है ना वो आगे जा करके अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि आखिरत को नंबर वन प्रायोरिटी बनाएंगे और दुनिया को नंबर टू प्रायोरिटी बनाएंगे। और अगर हम उनकी प्रायोरिटीज दूसरी सेट कर देंगे तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया को छोड़ करके आखिरत को नंबर वन प्रायोरिटी बनाना। अब इस तफसील के बाद फिर अगली बात इसके अंदर जो थी वो हम पहले पढ़ लेते हैं किताब से, पेज नंबर 125 के ऊपर, फिर उसको थोड़ा सा डिस्कस करना था कि शुबा व कबाइरा, ये पेज नंबर 125 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ है हदीस के नीचे। तो फरमाते हैं यहाँ पर कि शुऊब का जो लफ्ज़ है ना, ये शुऊब की जमा है, बहुत बड़ी जमात को शुऊब कहते हैं, जो किसी असल पर मुजतमे हो, जो किसी एक असल पर मुजतमे हो, यानी उनकी बुनियाद एक हो। असल का मतलब होता है बुनियाद, ठीक है, फाउंडेशन। तो किसी एक असल पर वो आके जमा हो जाती है, फिर उनमें मुख्तलिफ कबाइल और खानदान होते हैं। तो असल का मतलब क्या है कि जिनके वालिदैन एक हों, ठीक है, एक बाप एक माँ, तो वहां से नस्ल चली हो, तो वो जो बाप और माँ हैं वो उनकी असल कहलाएंगे, बुनियाद कहलाएंगे, ठीक है, कि वहां से फिर वो उनकी औलादें आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते वो मुख्तलिफ कबाइल और खानदानों की शक्ल अख्तियार कर गई। ठीक है, जैसे कि बनी इसराइल, ये बहुत बड़ा कबीला है, ठीक है, लेकिन इनके असल क्या है, ये इसराइल के बेटे हैं। इसराइल कौन? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। तो याकूब अलैहिस्सलाम इनकी असल होए, बुनियाद होए, और याकूब अलैहिस्सलाम के फिर 12 बेटे थे, 12 में से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, एक बिन्यामीन थे, ठीक है ना, और बाकी जो 10 थे वो थे जिन्होंने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, फिर बाद में सारी तफसील चली थी। ठीक है, तो 12 बेटे थे उनके, फिर 12 से जो है वो इतनी औलादें हुई कि चंद ही सालों के अंदर ये 6 लाख बन गए, बनी इसराइल 6 लाख। और जब फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम इन बनी इसराइल को लेकर के मिस्र से बाहर निकले थे ना, तो उस वक्त ये 6 लाख थे। हालांकि जब ये एंटर हुए थे मिस्र में अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, तो उस वक्त ये कितने थे? 12। ठीक है, और 12 के फिर जो औलादें होंगी वो थे बस, उसके बाद इतनी तेजी से ये 6 लाख की तादाद में बढ़ गए। ठीक है, तो इनकी असल जो थी वो याकूब अलैहिस्सलाम थे। तो फरमाया कि फिर खानदानों में भी बड़े खानदान और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के अरबी जुबान में अलग अलग नाम है। तो सबसे बड़ा हिस्सा शुएब कहलाता है, या शुएब, शुएब भी कहते हैं। ठीक है, जैसे शुएब अबी तालिब, जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम और उनके खानदान के साथ जो किया था ना, उन्होंने बायकॉट किया था, तो वो क्या था, शुएब अबी तालिब। तो बेसिकली अबू तालिब जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा थे, तो उनका जो पूरा खानदान था उसका उन्होंने बायकॉट कर दिया था। ठीक है, और एक वादी में वो सारे के सारे मुंतकिल हो गए थे, तो चूंकि वो पूरा का पूरा खानदान वादी में मुंतकिल हो गया था, ठीक है, तो इस वजह से उस वादी को भी शुएब अबी तालिब कहा जाने लगा। ठीक है, कि ये खानदान है अबी तालिब, अबू तालिब का। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा शेब कहलाता है और सबसे छोटा हिस्सा अशीरा कहलाता है। ठीक है, तो खानदान में भी छोटे और बड़े खानदान होते हैं। और अबू वर्राक का कौल है कि शेब और शुऊब अजमी कौमों के लिए बोला जाता है जिनके अनसाब महफूज नहीं है। ठीक है, यानी अबू वर्राक एक जाहिर है एक स्कॉलर गुजरे हैं, अरब दान ही थे, तो इनके तहकीक के मुताबिक ये जो नॉन अरब कौमें थी ना उनके ऊपर ये शेब और शुऊब का लफ्ज बोला जाता है, अरबों पर नहीं बोला जाता। ठीक है, लेकिन ये इनका कौल है खाली, यानी ये इनकी तहकीक है, बाकी लोगों की ये तहकीक नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों की तहकीक के मुताबिक क्या है कि अरबों के खानदानों ही में जो बड़े खानदान होते हैं उनको शेब बोला जाता है और छोटे खानदान को अशीरा बोला जाता है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्कॉलर्स के दरमियान होता है, तो यहाँ पर भी वही डिस्कस इन्होंने मेंशन कर दिया। अच्छा, जिनके अनसाब महफूज नहीं, نسب محفوظ نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو عجمی لوگ ہوتے تھے تو ان میں نا یعنی چونکہ گناہ بہت زیادہ عام تھا, یہ خاندانی لوگ نہیں تھے نان عربز, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا ان کے یہاں جو ہے وہ زنا کا گناہ بھی جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ عام تھا, اسپیشلی جیسے یورپین جو قومیں ہیں اور ایون یورپ کے علاوہ بھی جو دوسرے علاقوں کے اندر جو نان عرب قومیں تھیں, تو چونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جی کون کس کی اولاد ہے, کوئی ایسا حسب نسب جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا جاتا تھا, تو وہی یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ جو اولاد ہے وہ اس کا اصل میں باپ کون ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے انساب محفوظ نہیں تھے. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا وہ عربوں کے ساتھ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ نہیں تھا, کیونکہ بنی اسرائیل بھی نبیوں کی اولاد ہیں اور عرب جو ہیں یہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں. کون سے نبی کی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, انہی کی اولاد ہے نا یہ عرب, ٹھیک ہے, اور بنی اسرائیل بھی جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام, پھر اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے, اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, تو ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے. تو ان کے یہاں جو ہے نا وہ انساب یعنی جو جو فیملی ٹری ہوتی ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے, اس کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس محفوظ ہوتی تھی. آج تک لوگ اپنے نسب نامے جو ہیں جو ان کے جن کا تعلق عرب خاندانوں سے ہے تو وہ اپنے نسب نامے جو ہیں وہ لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ جی اسلام سے پہلے ہر قسم کے گناہ عام تھے, ٹھیک ہے, تو عربوں کے اندر ہر قسم کے گناہ عام تھے, تو بھئی ہر قسم کے گناہوں کے اندر تو زنا کا گناہ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی دوسری قوموں کے انساب محفوظ نہیں تھے لیکن عرب کے انساب محفوظ تھے, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یعنی سوال سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عجمی قوم تھی نا, عجمی قوم ہے یعنی نان عرب قوم ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے جو نسب تھے وہ محفوظ نہیں تھے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں محفوظ نہیں تھے, اس لیے کہ ان کے یہاں زنا بہت عام تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں سے آپ بنی اسرائیل کو ایگزمپٹ کر دیں کیونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے علاوہ جو عجمی قومیں تھیں ان میں انساب محفوظ نہیں تھے کیونکہ ان کے یہاں زنا بہت عام تھا. تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی عربوں میں بھی یہ ساری چیزیں بہت عام تھیں, تو پھر عربوں کے نسب جو ہے وہ کیسے محفوظ ہو گئے, یا بنی اسرائیل میں بھی اس طرح کے گناہ جو ہے وہ عام ہو گئے تھے, تو پھر بنی اسرائیل کے نسب کیسے محفوظ رہ گئے جبکہ وہاں پر بھی یہ گناہ عام ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے جو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ کو اس کا جواب پتہ ہوگا کیونکہ ذرا مشکل جواب ہے, وہ یہ ہے کہ عربوں میں اور ایون بنی اسرائیل میں بھی, ٹھیک ہے نا, دو قسم کے لوگ تھے, دو قسم کے, ایک وہ لوگ تھے جو کہ شریف کہلاتے ہیں, شریف کا مطلب ہوتا ہے جن کا کہ معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ نا اپنے اپنے شہروں کے اندر خاندانی لوگ کہا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خاندانی لوگ, اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ہم بہت ہی یعنی گئے گزرے قسم کے لوگ کہا کرتے ہیں, غیر خاندانی قسم کے لوگ, ٹھیک ہے, اور یعنی جن کی جو کہ شریف لوگ نہیں کہلاتے معاشرے میں, نا ان کی ایسی عزت نہیں ہوتی, وہ بڑی یعنی گالی گالم گلوچ کی زبان استعمال کرنا, بڑی ہی جو ہے وہ رف قسم کی استعمال کرتے ہیں زبان استعمال کرتے ہیں, اور ان کے رہنے سہنے کا طریقہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی یعنی کم درجے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ فائنینشیل اکنامک ڈسٹنکشن کی بات نہیں کر رہا بلکہ رہن سہن کے طریقے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک شریف لوگ کہلاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یعنی اوباش قسم کے لوگ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عربوں کے درمیان عربوں کے اندر بھی دو طرح کے لوگ تھے, ایک شریف لوگ تھے اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اوباش قسم کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. تو زنا جو گناہ عام تھا نا وہ شریف لوگوں میں عام نہیں تھا, ٹھیک ہے, شریف عربوں میں عام نہیں تھا, وہ اس دوسرے قسم کے عربوں میں عام تھا. جو شریف لوگ تھے ان کے اندر دوسرے گناہ عام تھے, شرک والا گناہ آف کورس, ٹھیک ہے, شرک والا گناہ عام تھا, ظلم جو ہے وہ غریبوں کے اوپر کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس قسم کے جھوٹ بولنا, اور یعنی بہت سارے گناہ عام تھے, لیکن जिना वाला जो गुनाह है वो शरीफ लोगों में आम नहीं था, बल्कि जो गैर शरीफ लोग थे उनमें आम था। ठीक है, तो जो शरीफ लोग थे वो अक्सरियत में होते थे, अक्सरियत में, ठीक है, इवन अरबों में भी अक्सरियत में कौन लोग होते थे? शरीफ लोग होते थे। तो इन शरीफ लोगों में चूंकि ये वाला गुनाह आम नहीं था ना, इस वजह से इनके दरमियान जो इनके हसब नसब थे ना वो महफूज थे। ये पता होता था कि कौन किसका बेटा है, ठीक है ना, और उसका बाप कौन था और उसका बाप कौन था, ठीक है, तो नसब नामे इनके यहाँ महफूज थे। ठीक है, उसी तरीके से बनी इसराइल में भी ऐसे ही था कि बनी इसराइल में भी लोग यानी जिना का गुनाह हो जाया करता था लोगों से, लेकिन आम नहीं था ये, ठीक है, बहुत ही कम हुआ करता था ऐसा, ठीक है, बनी इसराइल के दरमियान यानी यहूदियों के दरमियान, जबकि दूसरी जो कौमें थी उनमें ये बात आम थी। स्पेशली अगर आपने कुछ तारीख पढ़ी हो, ये जो रॉयल ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, ठीक है, जिसमें ये क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की सबसे ज्यादा आज के दौर में जो है वो मुअज्जिज़ खातून कहलाई जाने वाली है ना, तो ये तो इस दौर में इनके पास खूब दौलत आ गई और खूब जो है वो इस तरह से ये बजाय सफाई सुथराई वाली जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनके अगर आप आबाओ अजदाद की तारीख पढ़े ना, ये क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर जो क्वीन विक्टोरिया और एलिजाबेथ 1 एलिजाबेथ 2 ना जाने क्या क्या इनकी तफसीलात हैं, तो उनमें अगर आप पढ़ें तफसील तो पता चलेगा कि इनके यहाँ जो क्वीन होती थी ना, यूजली ये औरतों से इनका इनके क्वीन का सिस्टम चलता है, तो क्वीन जो होती थी उसके 100 100 से भी ज्यादा जो है ना वो शौहर हुआ करते थे, 100 से भी ज्यादा शौहर हुआ करते थे, ठीक है ना। उसी तरह से जो किंग हुआ करते थे, तो किंग के जो है वो औलादें किससे चल रही होती थी किसी को कुछ पता नहीं होता था। महल के अंदर इनके जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का महल होता है उस महल के अंदर कौन किसकी औलाद है कुछ पता नहीं होता था, ठीक है। उसी तरीके से ये जो बाकी भी जगहों पे यानी जो फ्रेंच रॉयल फैमिली हो गई, डच रॉयल फैमिली हो गई, स्पेन के अंदर जो रॉयल फैमिली हो गई, तो रॉयल्स का ये हाल था। जब रॉयल्स का ये हाल था, ठीक है, तो फिर अवामुन्नास का तो हाल इससे भी ज्यादा बुरा था, ठीक है। तो इन लोगों के यहाँ हसब नसब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हिंदुओं के अंदर भी इससे भी ज्यादा बुरा हाल। हिंदुओं के तो आज भी जो है वो ऐसा मामला है कि जो शादी करके एक लड़की घर में आती है तो कुछ जगहों पर बाकायदा इट्स पार्ट ऑफ देयर रिलीजन के घर के अंदर जितने मर्द होते हैं ना वो सब उस लड़की को अपनी मिल्कियत समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें दुनिया के अंदर मौजूद हैं गैर इस्लामी मुआशरों के अंदर बहुत ज्यादा, और इस्लामी मुआशरों के अंदर जहाँ लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया तो फिर वहां पर इसकी कुछ ना कुछ छोटी मोटी शक्ल जो है वो स्टार्ट हो गई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी भी इस्लामी मुआशरा जो है उन चीज़ों से बड़ी हद तक महफूज है। छोटा या बड़ा खानदान किस एतबार से कहेंगे, तादाद या नसब के एतबार से? नहीं, तादाद के एतबार से, ठीक है, यानी जैसे अशीरा जो है वो अशरा से निकला, तो अशरा जो है वो 10 को कहा जाता है, तो टेंस के अंदर अगर किसी की तादाद है किसी खानदान की तो उसका जो है वो अशीरा कहा जा सकता है, और उससे बड़ा जो है वो यानी हंड्रेड्स में जो नंबर्स हो गया तो फिर वो शोब या शेब हो गया, ठीक है, तादाद के अतबार से होगी ये बात। अच्छा, इसके बाद नस्बी और वतनी या लिसानी इम्तियाज में हिकमत व मसलहत तारुफ की है, तो फरमाते हैं कि कुरान करीम ने इस आयत में वाजह कर दिया कि तआला ने अगरचे सब इंसानों को एक ही बाप और माँ से पैदा करके सबको भाई भाई बना दिया है, मगर फिर इसकी तकसीम मुख्तलिफ कौम व कबीलों में जो हक तआला ही ने फरमाई है उसमें हिकमत यह है कि लोगों का तआरुफ और शनाख्त आसान हो जाए। मसलन एक नाम के दो शख्स हैं तो खानदान के तफावत से इनमें इम्तियाज हो सकता है, ठीक है। जैसे सहाबा के नाम आप देखते हैं तो बहुत सारे यानी ऐसे सहाबा भी हैं कि जिनके नाम सेम है, ठीक है, लेकिन उनके बाप का नाम डिफरेंट था, कि जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम जो है वो बहुत सारे सहाबा का है लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अलग है, अब्दुल्ला बिन बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अलग है, ठीक है, तो और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ये अलग सहाबी हैं, ठीक है। अब्दुल्ला नाम तो बहुत सारे लोगों का है लेकिन बाप के नाम डिफरेंट होने की वजह से फिर तफरीक करना आसान हो गया। उसी तरीके से ये शख्स जो है वो कौन से कबीले से ताल्लुक रखता था और दूसरा शख्स जो है वो उसका नाम भी सेम था लेकिन वो किसी और कबीले से ताल्लुक रखता था, तो ये सब जो है वो तारुफ और शनाख्त के लिए है। अच्छा, और नस्बी कुर्ब बोध की मिकदार पर ان کے حقوق شرعیہ ادا کیے جاتے ہیں. تو جو آپ سے زیادہ خاندانی اعتبار سے قریب ہوتا ہے تو اس کے حقوق بھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کا سگا بھائی ہے کوئی, تو سگے بھائی کا حق جو ہے وہ کسی کزن کے حق سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن کزن جو ہے وہ بھی خاندان کا حصہ ہی کہلاتا ہے. تو اگرچہ کہ جو کزن اگر دوسرے جینڈر کا ہو تو اس سے پردہ شرعی وہ تو ایک الگ چیز ہے, شرعی پردہ کرنا تو فرض ہے. ٹھیک ہے, لیکن کزن ہونے کے اعتبار سے وہ خاندان کا فرد تو بہرحال ہے. ٹھیک ہے, تو خاندانی اعتبار سے اس کا حق جو ہے وہ زیادہ ہوگا کہ بھئی اگر اس کو آپ ضرورت میں دیکھیں گے تو اس کی ضرورت پورا کرنا وہ آپ کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور بستی میں جا کر کے کسی غریب بندے کو تلاش کر کے اس کی ضرورت پوری کریں. ٹھیک ہے, اپنے خاندان میں اگر کسی کزن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب ہے, وہ زیادہ یعنی وہ مدد کا مستحق ہے, تو اس کو چھوڑ کر کے دور کہیں جا کر کے غریبوں کی بستی تلاش کر کے پھر وہاں پہ اپنی زکوٰۃ کی رقم دینا یا صدقہ خیرات کرنا, یہ نیکی کا کام نہیں ہوگا, بلکہ خاندان میں اپنے زکوٰۃ اور صدقے کو خرچ کرنا یہ زیادہ نیکی کا کام ہوگا. تو حقوق شریعہ جو ہیں وہ نسبی قرب اور بہت کے مقدار پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ثواب رکھے ہیں. اسی طرح اسبات کا قرب و بہت معلوم ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت تقسیم میراث میں پیش آتی ہے. اسبات ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے میراث کے اندر حصہ رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ماں باپ کا حصہ میراث کے اندر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, اور بیٹے کا, بیٹی کا, اور بیوی کا, شوہر کا. ٹھیک ہے, یہ سارے اسبات میں کہلاتے ہیں. دادا, دادی, نانا, نانی. ٹھیک ہے, ان سب کے حصے جو ہیں وہ شریعت نے مقرر کر دیے ہیں. تو اگر یہ موجود ہوتے ہیں نا تو ان کو شریعت کے تقسیم کے حساب سے حصہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے, تو اس تقسیم سے جو ہے وہ ان کا بھی قرب و بعد بہت معلوم ہوتا ہے کہ کون زیادہ قریبی رشتہ دار ہے, کون دور کا رشتہ دار ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نسبی تفاوت کو تعارف کے لیے استعمال کرو, تفاخر کے لیے نہیں, فخر کے لیے ایک دوسرے کے درمیان استعمال نہ کرو. اب یہاں پر چند چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, وہ یہ ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس سے بھی ظاہر ہے, اس کی مزید اہمیت سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انزل الناس منازلہم. ٹھیک ہے, کہ انسانوں کے ساتھ ان کی جو رتبے ہیں نا ان کے حساب سے برتاؤ کرو. ٹھیک ہے, انسانوں کے ساتھ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے منازل منزلیں بنائی ہیں, یعنی منزل کا مطلب ہے رتبے, لیولز. ٹھیک ہے, تو ان سے ان کے حساب سے برتاؤ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کا کوئی بڑا عزت دار شخص, امیر, امیر سے مراد اس قوم کا یعنی جو لیڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر تمہارے پاس آئے نا تو اس کو ذرا زیادہ عزت دو, اس کے اس پوزیشن کی وجہ سے زیادہ عزت دو. ٹھیک ہے, کسی اور شخص کے مقابلے میں. اب بظاہر یہ بہت ہی خراب چیز لگتی ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی کسی غریب کے ساتھ جو ہے وہ آپ عزت کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں, اور جو لیڈر آ گیا, کوئی امیر آ گیا, تو اس کے ساتھ آپ عزت کا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے, یہ بری چیز نہیں ہے, بلکہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ غریب کو بھی آپ نے عزت دینی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ایسا شخص آ گیا جس کی کسی معاشرے کے اندر یا کسی سوسائٹی میں کوئی اہم مقام ہے نا, تو اس کو اس کے مقابلے میں زیادہ عزت دینی. یہ نہیں کہ غریب کو عزت نہیں دینی ہے, اس کو ذلیل کرنا ہے اور امیر کو عزت دینی ہے. نہیں, غریب کو بھی عزت دینی ہے لیکن اس کے مقابلے میں امیر کو زیادہ عزت دینی ہے. اور زیادہ عزت دینے کے لیے مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ہیومن سائیکالوجی کی امپورٹنس آتی ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ سب سے زیادہ اچھی ہے کہ بھائی عزت کا معیار تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, یہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو مقام دیں گے نا وہ دنیا کے اندر لیڈر ہونے کے اوپر نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں کسی قوم کا لیڈر ہے, دنیا میں کسی قوم میں جو ہے وہ عزت کا مقام ہے, تو اس وجہ سے جنت میں بھی جو ہے وہ اس کو عزت کا مقام ملے گا. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جنت کا مقام صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ملے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا مقام ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں کون سا مقام دیں گے. ठीक है, लेकिन इस दुनिया के अंदर लोगों को डील करना भी जो है ना, वो भी हमारे हमारा दीन हमें सिखाता है कि जिस शख्स का मुआशरे के अंदर मुकाम है तो उस शख्स को तुम इस तरह से केयरफुली हैंडल करो ताकि उसके लिए जो है वो दीन के अंदर आना आसान हो जाए। ठीक है, उसके लिए कोई खामखा के जो है ना वो यानी सख्तियां पैदा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, बल्कि उसके लिए फैसिलिटेट करो कि उसके नफ्स के ऊपर ज्यादा भारी ये बात ना हो कि वो आपकी बात मान करके दीन के अंदर आ जाए। तो भाई वो बंदा जो है वो आदी है कि उसको कौम के अंदर एक इज्जत का मुकाम दिया जाता है। तो अब उसके साथ जो है ना वो आप बेइज्जती का मामला करके ये ना करें कि जी मैं उसको जरा छट्टी का दूध याद दिलाता हूँ ताकि इसका जो है ना गुरूर खाक में मिल जाए। ठीक है, हर बंदे के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो आपके पास आ रहा है सीखने के लिए, बात कुछ पूछने के लिए आ रहा है, तो खामखा गुरूर को एज्यूम करके उसको जलील करने के लिए करना जो है ये बात मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो आकर के बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा है और जो है वो कोई ऐसा मामला कर रहा है कि जिसके अंदर ये बात जरूरी महसूस हो रही है कि हाँ इसके गुरूर को जरा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जो है वो उस खास नीयत से उसके साथ ऐसा मामला करना जरूरी अगर हो जाए कि जिससे कि उसकी जो जो नाक है वो थोड़ी सी टूटे, ठीक है, उसकी अनानियत जरा सी टूटे, तो वो एक अलग मुकाम है। लेकिन खामखा फॉर नो रीजन बस ऐसे ही जी ये अमीर है तो मैं जब तक उसको नीचा नहीं दिखाऊं उस वक्त तक मैं इसको इसके साथ दीन की बात नहीं करूंगा, ठीक है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जो कौम के लीडर्स आते थे तो उनको जो है वो जरा ज्यादा एहतमाम के साथ उनको वक्त दिया करते थे, ठीक है, और उनके साथ जो है वो अच्छे से बात किया करते थे ताकि लीडर्स जो हैं वो जब दीन में आ जाते हैं ना तो जो अवामुन नास होते हैं वो अपने लीडर्स को फॉलो किया करते हैं। ठीक है, तो अगर एक लीडर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएगा तो उसके दाखिल होने की वजह से हजारों दूसरे लोग जो हैं वो दीन में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कलमा पढ़ लेंगे और वो ईमान ले आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम जो कबाइल के सरदार आया करते थे ना तो उनको ज्यादा वक्त दिया करते थे, उनके साथ जो है वो इज्जत वाला मामला किया करते थे एक्स्ट्रा। ठीक है, और जो गरीब आते थे उनके साथ जो नॉर्मली इज्जत वाला मामला है वो भी किया करते थे। ठीक है, उसी तरीके से सहाबा से भी इस तरह के वाकयात मनकूल हैं। हजरत आयशा सिद्दीका तआला के पास जो है मांगने के लिए एक अमीर शख्स आया, कुछ उसकी कोई जरूरत थी, वो मुसाफिर था लेकिन उसको जरूरत पड़ गई थी, तो उसने आकर के जो सदा लगाई या उसने जो पैगाम भेजा तो आयशा सिद्दीका तआला ने उसको ज्यादा चीज दी, ज्यादा बेहतर चीज दी, और एक नॉर्मल आदमी आया तो उसको भी कोई चीज दी उसकी जरूरत के बदले में, लेकिन वो इतनी कोई अहम चीज नहीं थी। तो जब वजह पूछी गई आयशा सिद्दीका से कि आपने इन दोनों के दरमियान ऐसा तफरीक वाला मामला क्यों किया, तो रज़ियल्लाहु अन्हा ने यही जवाब दिया, ठीक है, कि वो जो है वो कबीले का सरदार था और ये शख्स जो है वो एक आम आदमी था, तो इसकी जरूरत जो है वो इससे पूरी हो गई, लेकिन वो जो है वो इससे ज्यादा का आदी था तो उसको जो है मैंने फिर ज्यादा भिजवाया। ठीक है, तो इसमें जो मामला करने वाला है तो उसकी नीयत यही होगी कि मैं सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा हूँ, ये नहीं कि जी मुझे कोई दुनियावी मफाद हासिल हो जाएगा, अमीर की आवभगत करने से मुझे दुनियावी मफाद हासिल हो जाएगा इस वजह से मैं अमीर की आवभगत करूँ, तो ये नीयत गलत है। ठीक है ना, लेकिन अगर इस नीयत से वो आवभगत कर रहा है अमीर की कि भाई ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है, और ये नीयत कर ले कि भाई ये शख्स जो है वो अगर दीन की तरफ मायल हो जाता है मेरे इस बर्ताव की वजह से तो इसके मायल होने की वजह से बहुत सारे और लोगों को भी दीनी फायदा हो जाएगा, तो ये नीयत जो है वो 100% जायज नीयत है। ठीक है, तो इसी वजह से हम अपने मशायख को और उलमा को देखते हैं कि वो ऐसा फर्क जो है ना वो रवा रखते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इसकी हिकमत पता नहीं होती है, तो जो बदगुमानी करने वाले लोग होते हैं तो वो फिर मशायख से बदगुमान हो जाते हैं कि अच्छा भाई इन्होंने जो है वो गरीब आदमी को तो इतना टाइम नहीं दिया और जो अमीर आया था और डॉक्टर साहब आए थे या जो किसी यानी कोई प्रोफेसर साहब आए थे या कोई साइंटिस्ट साहब आए थे तो उनको जो है वो इन्होंने बड़ा ज्यादा टाइम दिया, तो ये जो है ना ये तो अमीर और गरीब के दरमियान तफरीक करते हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती, वो तफरीक नहीं कर रहे होते बल्कि वो नबी अलैहिस्सलाम की इस तालीम के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अवाम को पता नहीं होता तो अवाम को चाहिए कि अपने मशाइख के ऊपर ना एतमाद करें। ठीक है ना, जाहिर है भाई आपको हर चीज का तो पता नहीं होगा ना, अगर आपको हर चीज का पता हो गया तो फिर आप खुद भी आलिम बन गए, लेकिन आप तो आलिम नहीं है, अभी तो आप एक आम इंसान है, तो तो आपको तो हर चीज की बारीकियां नहीं पता ना, तो इस वजह से बड़ों पर एतमाद करना और बदगुमान होनी नहीं हो जाना, बात बात के ऊपर बदगुमान होगा कि जी वो तो उनको तो आता नहीं है कुछ, और वो तो यानी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लोगों को किसी और चीज की तालीम देते हैं और खुद जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, ठीक है, यानी हर वक्त जो है वो एक एतराजी निगाह से अपने बड़ों को देखना, तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि हाँ, ये जो शुऊब और कबाइल के दरमियान फर्क अल्लाह ताला ने बनाया, तो यहाँ पर इसकी जो जो रीजन लिखी वो है कि तुम एक दूसरे के साथ यानी तारुफ का मामला कर सको, पहचान का मामला कर सको। लेकिन ये जो खानदानी निजाम होते हैं, तो इसकी एक रेलेवेंस या एक सिग्निफिकेंस जो है वो एक और मुकाम पर आती है, ठीक है, कि भाई ये जो खानदानी नस्बतें हैं इनका लिहाज करना चाहिए जब आप अपनी औलाद की शादी कर रहे हो, ठीक है। इसको कहते हैं कुफ में शादी करना, कुफ कुफ कैसे लिखते हैं, काफ फा वाव, कफू जैसे लिखे ना कफू, लेकिन उसको कफू नहीं पढ़ेंगे, उसको कुफ पढ़ते हैं, ठीक है, काफ फा वाव। तो कुफ में शादी करना, कुफ में शादी करने का क्या मतलब है कि जैसे आपके खानदानी एक स्टैंडिंग है, ठीक है, तो अपने औलाद की जो जो रिश्ता तलाश करें ना, तो उसी खानदानी स्टैंडिंग में तलाश करें, तो ये ज्यादा मुनासिब बात है, ज्यादा बेहतर बात है। जैसे आपका जो घर का मामला है वो जरा यानी खुला हाथ है आपको अल्लाह ताला ने दिया, और आपके पास जो है वो यानी बहुत ज्यादा तंगी और गुर्बत और अफलास का मामला नहीं है घर के अंदर, ठीक है ना। तो अब अपनी बेटी की जो शादी के लिए आप अगर रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो कोई बहुत ही गरीब शख्स को उठा करके अपनी बेटी का रिश्ता ना दे दें, ठीक है, बल्कि कोई ऐसा बंदा तलाश करें जो कि फाइनेंशियली जो है वो तकरीबन इसी लेवल का हो जिस लेवल के जो है वो आपका आपके घने घराने में आपकी लड़की जिसकी आदी है, ठीक है। उसी तरीके से खानदानी एतबार से भी कि भाई अगर कोई जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा जैसे भाई सैयद खानदान वाले लोग हैं, ठीक है, अब सैयद खानदान वाले लोग जो हैं वो सैयद खानदान के अंदर शादी करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो सैयद खानदान को तलाश करके अपने बच्चे की शादी जो है वो सैयद खानदान के अंदर करना ना, इसके अंदर नीयत देखी जाएगी कि नीयत क्या है, क्या फखर की वजह से आप ये ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई हम तो सैयद हैं, तो हमारा तो जी जोड़ किसी से नहीं मिलता, ठीक है, तो हम तो अफजल लोग हैं, तो हम गैर अफजल लोगों में कैसे अपनी बेटी की शादी कर दें या अपने बेटे की शादी कर दें। ये नीयत जो है ये फखर की नीयत हो गई, ठीक है, तो फखर की वजह से ऐसा मामला करना जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको फखर की बुनियाद नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन कुफ के अंदर शादी करना, ये कुफ में शादी करना जो है ये हमारे दीन का हिस्सा है, ये नबी अलैहि सलाम की सुन्नत से भी साबित है, ठीक है, ये कुफ में शादी करना। अब ये जो है कुफ में शादी करना जो है वो अब इसके अंदर बड़ी असल में ना तफसील है इसके अंदर, और बारीकियां भी इसके अंदर होती हैं, और इसमें एक बड़ा मामला ये भी होता है कि जिसको ज्यादा दीन की समझ ना हो तो उससे ना कुफ तलाश करने में गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि शैतान जो है ना वो इंसान को बहकाता है और वो नियतें जो है ना वो खराब कर देता है, ठीक है। तो असल में दिल के अंदर ये तमन्ना होगी कि मैं सैयद खानदान में शादी करूं क्योंकि ये अफजल खानदान होता है, और मैं किसी गैर अफजल खानदान में अपनी बेटे की शादी नहीं करना चाहता, ठीक है, तो असल में नियत ये है। लेकिन ऊपर से जो है वो बहाना क्या बना रहे हैं कि जी मैं तो कुफ में शादी करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं सैयद खानदान तलाश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना ये गलत, ये झूठ हो जाएगा, और इसकी जो है वो हमारे दीन इजाजत नहीं देता, ठीक है, झूठ बोलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन कुफ की जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो यही है कि जी अगर गैर कुफ के अंदर शादी करते हैं ना, तो फिर खामखा की एक 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 मुश्किल क्रिएट हो जाती है, खानदान वालों के लिए भी क्रिएट हो जाती है और इवन औलाद के लिए भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कि उससे जो है ना फिर रहा नहीं जाता, उस बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के लोगों के अंदर एडजस्ट होना जो है वो औलाद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर उनका अजदवाजी मामला जो है वो निभ नहीं पाएगा और हो सकता है कि ये मामला जो है वो खत्म ही हो जाए, जिसकी वजह से कि बहुत ज्यादा मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, ठीक है। तो इस बिगाड़ को शरीयत ने अवॉइड करने की तालीम दी है कि बेहतर है कि आप अवॉइड करें, ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें, ठीक है, कि ये अजदवाजी मामला खराब हो और मामला जो है वो फिर घर टूटने की नौबत तक पहुंच जाए, ठीक है। तो कुफ में शादी करना जो है ये यानी हमारे दीन का हिस्सा है, ठीक है। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो कि उम्महातुल मोमिनीन में बाद में दाखिल हुई, तो इनकी शादी जो है वो पहले नबी अलैहिस्सलाम ने गैर कुफ के अंदर की थी, ठीक है। वो गैर कुफ के अंदर कैसे की थी कि हजरत जैद रजी अल्लाह तआला जो कि ओरिजिनली गुलाम थे लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया था, तो वो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर रहे थे और एकदम बेटे की बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था ना, मुंह बोला बेटा वाला मामला वहीं पर तो सारा का सारा मामला हुआ था। तो जैद अलैहिस्सलाम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मानिंद थे, हत्ता कि लोग उनको जैद बिन मोहम्मद कहा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब अलैहिस्सलाम जो कि कुरैश के खानदान की एक बड़ी मुअज्जज खातून थी तो उनसे जैद का निकाह रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये शादी चल नहीं सकी थी और इसकी वजह जो है ना वो बुनियादी तौर पर यही बनी थी कि खानदानी तफावत जो है वो बहुत ज्यादा था यहाँ पर, ठीक है ना, बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा फर्क था तो आपस में निभ ही नहीं सकी, ठीक है। फिर जो है वो सारा मामला हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर इस शादी को इस्तेमाल करते हुए फिर ये जो गलत रस्म थी कि लोग जो है वो मुंह बोले बेटे को जो है वो उस मुआशरे के अंदर सगे बेटे की तरह से ट्रीट करते थे, तो इस गलत रस्म को फिर अल्लाह ताला ने इस तरह से तोड़वाया भी था कि जैनब का फिर की तलाक हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर जैनब आई, ठीक है। और ये जो निकाह था फिर ये कुफ के मुताबिक था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी थे और ज़ैनब अल-तान जो है वो भी कुरैश की इज्जतदार खातून थी, ठीक है। तो ये कुफ का मसला भी जो है ये भी हमें याद रखना चाहिए और जब कभी शादी वगैरह का मामला आए तो उसमें इस बात को भी इस सही नीयत के साथ जो है ना वो अपने जहन में रखना चाहिए। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर भी है कि जो भी ईमान वाला होता है वो कम से कम कुफ जो है ना वो हर ईमान वाले के साथ साबित होता है, ठीक है। तो इसमें कोई यानी कोई वाजिब वाली पाबंदी नहीं है कि जरूरी है कि जी आप अपने खानदान में ही शादी करें, खानदान के बाहर शादी नहीं कर सकते, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई नेक दीनदार और अच्छी सलाहियतों वाला लड़का मिल जाता है खानदान के बाहर तो उसके साथ शादी कर देना अपनी बेटी की, इसमें कोई जो है वो दीनी बुराई नहीं है, ठीक है। कुफ का ख्याल रखने की रीजन जो है वो सिर्फ इतनी है कि भाई खामखा की जो प्रॉब्लम है उनको अवॉइड किया जाए, ठीक है, लेकिन ये वजूब के दर्जे में नहीं है कि खुद कुफ में ही शादी करना है। तो हमारे मशायख को हमने देखा बल्कि हमारे अपने हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामतुल्लाह, तो उनके तीन औलादें हैं, दो बेटे और एक बेटी। तो चले बड़े बेटे और बेटी की शादी तो चूंकि उनका ताल्लुक पंजाब के साथ है तो बड़े बेटे और बेटी की शादी तो पंजाब की ही फैमिलीज के अंदर हुई है, लेकिन जो दरमियान वाले बेटे हैं आपने नाम भी सुना होगा सफुल्ला साहब जो है तो उनकी शादी जो है वो हजरत ने इंडियन गुजराती खानदान के अंदर करी, ठीक है, इंडियन गुजराती खानदान यानी पाकिस्तानी भी नहीं और गुजराती, और गुजराती और पंजाबी अच्छे खासे डिफरेंस है इन दोनों कल्चर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत ही नेक एक लड़की मिल रही थी और देखी भाली भी थी, उन्होंने आकर के माशाल्लाह हजरत के खान के मदरसे के अंदर तालीम भी हासिल करी, ठीक है, रहने वाले भी इंडिया के नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के एक मुल्क जैम्बिया के रहने वाले, ठीक है, तो वहां की एक लड़की से जो है अपने बेटे की शादी कर दी, तो वहां पर ये जो खानदानी कल्चर और इन सब चीजों को नहीं देखा क्योंकि नेकी जो है वो गालिब आ गई थी उसके अंदर, ठीक है। उसी तरह से और बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे मशाइख के मौजूद हैं कि जिसके अंदर के बिल्कुल गैर कुफ के अंदर शादी करी। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े वली गुजरे हमारे हाल के दौर में, आज से 50 60 साल पहले शायद उनका इंतकाल हुआ, तो पिछली सदी के बहुत बड़े वली कामिल के दर्जे के बुजुर्गों में उनका शुमार होता है, हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। ये सिख थे, कॉन्वर्ट थे, ये सिख से ये मुसलमान हुए थे, और इनके वालिदैन जो हैं वो इनके यानी दुश्मन हो गए थे, इनके साथ थे ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो इनके सुसर थे, जब वो रिश्ता तलाश करने के लिए दारुल देवबंद में पहुंचे, तो उन्होंने जब इनको देखा ना क्लास के अंदर पढ़ते हुए, तो इनके सुसर भी जो है वो एक अजीब यानी अल्लाह के वली थे, उन्होंने देखते ही इनके अंदर जो नेकी मौजूद थी वो देखते ही पहचान ली, और उन्होंने फिर इनके उस्ताद से बात करी कि मेरी बेटी जो है ना वो मैंने इसको अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया है, ठीक है। तो फिर इनकी शादी हो गई, कुछ इनके पास माल दौलत कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब, यानी जो मिट्टी की हद तक जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा पसमानदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी थी, खानदान भी कोई नहीं था और माल दौलत भी कोई नहीं थी। तो एक्सेप्शन जो होती हैं वो अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन जो हैं वो दीन और अच्छी सलाहियतों की बुनियाद पर होती हैं, अदरवाइज हमारा दीन कुफ की तालीम देता है। और आखिरी बात इसके तहत ये कि असबियत, इससे दीन हमारे दीन ने मना कर दिया है। असबियत क्या चीज होती है? असबियत ये होती है कि अपने खानदान को सपोर्ट करना हर हाल में, चाहे वो सही बात कर रहे हो फिर भी सपोर्ट करना, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खानदान वाले गलत बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यानी दीनी एतबार से गलत है, दुनियावी एतबार से गलत है, फिर भी उनको सपोर्ट करना सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे खानदान का बंदा है, ठीक है, इसको कहते हैं असबियत, ठीक है। और असबियत जो है वो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, और इससे जो है वो हमारे दीन ने मना कर दिया, ठीक है। असबियत की बुनियाद के ऊपर यानी खून खराबा होता है, बहुत मामला जो है वो खराब होते हैं, और ये चीज जो है वो किसी सूरत भी जायज नहीं हो सकती, ठीक है। तो असबियत होती है अपने खानदान को या अपने खानदान के किसी फर्द को उसके गलत फेल में भी सपोर्ट करना सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मेरे खानदान का फर्द है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो एक और मौजू भी इस आयत के तहत हमने बात करी है, पिछले जुमे के बयान के अंदर भी इसके ऊपर बात करी थी, और जो दूसरी हमारी तफसीली क्लास है उसमें भी बात करी थी, तो आपके सामने भी थोड़ी सी बात कर देते हैं उसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले। वो ये है कि जैसे अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि वजअलनाकुम शुउबा व कबाइला, ठीक है, कि हमने बना दिया तुमको शुउब में और कबाइल में, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो इंसानी सोसाइटी के अंदर खानदानी निजाम है और कबाइली निजाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ठीक है। इंसानी मुआशरे में खानदानी निजाम और कबाइली निजाम ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में हम ये देखते हैं कि खुसूसन पढ़े लिखे जो जो सेक्युलर तालीम याफ्ता लोग होते हैं, तो वो ना कबाइली निजाम को एक बहुत ही बुरे नजर से देखते हैं, बुरे अल्फाज से याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि गोया कि कबाइली निजाम जो है ये तो कोई जाहिलों का बनाया हुआ निजाम है, वहशी किस्म के इंसानों का बनाया हुआ निजाम है, ठीक है, और उससे जो है ना वो नफरत की हद तक यानी उसका मामला उसके साथ मामला रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कबाइली निजाम जो है वो इस आयत से साफ साबित होता है कि ये अल्लाह का पसंदीदा निजाम, अल्लाह ने इंसानों के लिए ये निजाम पसंद किया, ठीक है। तो अल्लाह का जो दुश्मन है शैतान, ठीक है, वो इंसानों का भी दुश्मन है, तो वो अपनी दुश्मनी फिर कैसे निकालता है इंसानों से कि वो इनके कबाइली निजाम को तोड़ने की कोशिश करता है, खानदानी निजाम को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कबाइल और खानदान चूंकि एक यानी बड़ी शक्ल है इंसानों के रहने की, तो बड़े लेवल के ऊपर जाकर के भी इन खानदानी और कबाइली निजामों को तोड़ता है, ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर यानी घर के लेवल पर भी जाकर के इंसानों के निजाम को तोड़ता है, ठीक है। तो हमने इसके तहत जो है वो बात ये करी है कि ये जो मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं ना, तो इससे जहां हमें कुछ फायदे नजर आते हैं, तो उन फायदों के साथ साथ इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया के अंदर इंसानों को नुकसान हुआ है। और उन नुकसानों में से एक नुकसान ये है कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में इंसानों के खानदानी और कबाइली निजाम जो हैं वो बिखर गए हैं। ठीक है, खानदानी और कबाइली निजाम बिल्कुल बिखर गए हैं, और शिराजा जो है ना वो इस सिस्टम का यानी बिखर गया है। ठीक है, तो अब उसकी बड़ी सारी तफसील है, लेकिन अभी खाली इतना कि इस इंडस्ट्रीज में काम करने की वजह से और इन इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है उन प्रोडक्शंस को कंज्यूम करने की हवस की वजह से इंसान जो है वो अब कबायली और खानदानी सिस्टम्स के अंदर रहने की बजाय दुनिया में जगह जगह जो है वो फैल गए। ठीक है, ताकि ज्यादा कमा सकें और ज्यादा जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। ठीक है, तो अब अगर हम अपने खानदानों को ही देखें तो जब हम छोटे थे तो यानी बहुत बड़े खानदानी सिस्टम के अंदर रहते थे, और हमें लोगों के बारे में पता होता था कि क्या किस हाल में कोई कौन रह रहा है और किसके घर के अंदर क्या हो रहा है, हत्ता के यानी लोगों के नाम याद होते थे, उनके बच्चों के नाम याद होते थे। हत्ता के उस जमाने में चूंकि हम लोग जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, लेकिन उस वक्त क्या करते थे, तो हमें सारे कजन्स के बर्थडेज भी याद हुआ करती थी कि कब किसको जो है वो कार्ड भेजना है, कब किसको जो है वो विश करना है। कहने का मकसद सिर्फ ये कि इतना ज्यादा क्लोज हम रहा करते थे, लेकिन जब हम अब अपने खानदान को देखते हैं तो कजन्स तो दूर की बात, कजन्स को तो पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, किसके कितने बच्चे हैं। ठीक है, इवन जो भाई बहन होते हैं एक ही माँ बाप की औलाद, वो भी जो है वो एक कोने में कोई रह रहा है, दूसरा दूसरे कोने में रह रहा है, तीसरा तीसरे कोने में रह रहा है, और साल में एक दफा मुलाकात होती है या वो भी नहीं होती बहुत सारे लोगों की। तो ठीक है, तो ये खानदानी निजाम का जो है वो शिराजा बिखर गया है, और इसकी जो मेन रीजन बनी है वो यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बनी है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है जिसको कि हम अनफॉर्चुनेटली अक्सर जो है वो बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं कि ये बड़ी तरक्की हुई है दुनिया के अंदर और इन लोगों ने जो है वो ये ईजादात करी हैं और इतनी जबरदस्त किस्म की उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजीज बना ली हैं जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी बहुत आसान हो गई है। ठीक है, ये हम समझते हैं कि इंसानों की जिंदगी आसान हो गई है और बेहतर हो गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हम तफसील में जाकर के जरा देखें हमें पता लगेगा कि ये आसान नहीं हुई है, ये हुआ ये है कि पहले जो जिंदगी थी ना वो आसान थी, उस आसान जिंदगी को इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पहले मुश्किल बनाया। ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल बन गई ना, तो अब उसकी बहुत ज्यादा मुश्किल को थोड़ा थोड़ा आसान करने के लिए अपनी कुछ इजादात जो है वो ऑफर करें। ठीक है, कि जो तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है, अब इस मुश्किल को थोड़ा थोड़ा सा ना, जिसको कहते हैं ना पैच वर्क करना। ठीक है, कि भाई बहुत बड़ा मसला तो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन उस बड़े मसले को जो है ना वो हल करने के लिए तो आपके पास कोई हल है नहीं, आपके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, तो अब जो है ना वो छोटे छोटे पैचेस, इधर से कोई चीज को फिक्स कर दिया, उधर से कोई दूसरी चीज को फिक्स कर दिया, किसी तीसरी चीज को फिक्स कर दिया, और उन छोटे छोटे जो फिक्सेस हैं, जो छोटे छोटे पैचेस हैं, उन पैचेस को और उन फिक्सेस को हम लोग जो है वो देख करके समझते हैं कि जी बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, ये जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से जो है ना वो इंसानों की जिंदगियां बड़ी आसान हो गई। हालांकि हकीकत क्या थी कि ये आसान नहीं हुई है, ये बड़ी मुश्किल क्रिएट करके फिर उसके बाद छोटी छोटी मुश्किलों को हल करने की जो है वो इन्होंने कुछ कुछ जो है वो रेमेडीज दे दी हैं, लेकिन असल में तो बड़ी मुश्किल अपनी जगह पर मौजूद है। जो बड़ी मुश्किलें क्या होती हैं, उनमें से एक ये है कि खानदानी निजाम जो है वो बिखर गया है। ठीक है ना, अब जब बिखर गया है तो अब जो है वो भाई बर्तन धोने के लिए कोई डिश वॉशर बना देना आपके लिए, ठीक है ना, कपड़े धोने के लिए जो है वो वॉशिंग मशीन बना देना, या ये जो है वो कोई और जो है वो बातचीत करने के लिए आपको जो है वो यानी इंटरनेट का सिस्टम दे देना। ठीक है ना, तो अब इंटरनेट का सिस्टम दे दिया, बड़े हम लोग खुश हो रहे हैं कि ओ जी बड़ा लोगों के दरमियान आपस में बातचीत जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। भाई अल्लाह के बंदे ये नहीं देखते कि बातचीत आसानी से हो जाती है इंटरनेट के ऊपर, तो क्या वो बात ज्यादा बेहतर नहीं थी कि लोग जो है वो एक साथ रहा करते थे, लोग जो है वो एक दूसरे को के अहवाल से सही मानों में वाकिफ हुआ करते थे, एक दूसरे की खुशी और गमी के अंदर शरीक हुआ करते थे। वो ज्यादा अच्छी बात थी कि ये ज्यादा अच्छी बात है कि पहले खानदान जो है वो टूटे, बिखरे, सारी दुनिया में जो है वो कोने कोने के अंदर बिखर गए, उसके बाद जो है वो आपने उनको इंटरनेट का सिस्टम दे दिया। अब इंटरनेट के सिस्टम के जरिए से जो है वो लोग जो है वो बात कर लिया करते हैं, या थोड़ी सी चैट कर दिया करते हैं, या फेसबुक के ऊपर जो है वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स लगा दिया करते हैं, तो उसको हम देख देख करके बड़ा खुश होना कि जी लोगों के दरमियान बड़ी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो भाई ये तो बात सही ना हुई ना, तो उम्मीद है कि हमारी बात समझ में आ रही होगी या जिस कहना क्या चाह रहा है। लेकिन अब चूंकि आपकी दूसरी क्लास जो है वो शुरू होनी है, फिका की क्लास, और टीचर और स्टूडेंट्स आ रहे हैं आ चुके हैं माशाल्लाह, तो इस वजह से यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इधर रिकॉर्डिंग ब्रेक करके फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, तो आप 2-4 मिनट की ब्रेक ले लीजिए जब तक।